धौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं जय उधरसेननाहो जेन महाकम्मपयणि पाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोद्धरियो समप्पियो फुफ्फयन्तस्स। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। ये जो षटखंडागम का द्वितीय खंड हमारा चल रहा है, खुद्दाबंध है इसका नाम। तो ये खुद्दाबंध नाम का अधिकार है और ये सातवीं पुस्तक है। सातवीं पृष्ठ पुस्तक के पृष्ठ संख्या 69 पर नाम आ गए है, 69। अभी इंद्रिय मार्गणा में ये पूछा गया था कि जीव एक इंद्रिय किस कारण से होता है, द्विंद्रिय किस कारण से होता है, आदि बातें वहां पूछी गई थी। तो वहां कारण ये बताया गया था कि जो क्षोभसम लब्धि से जीव एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि होता है। क्षोभसम लब्धि का अर्थ उन्होंने इस तरह से दिया था कि जो एक एक इंद्रियों को लेकर एक इंद्रिय जीवों को स्पर्शन इंद्रियावरण का सर्वघाती के उदय का अभाव है, उदय क्षय कहा, और देशघाती का उदय है, और सर्वघाती सत्ता में पड़े रहते हैं, उसको सर्वोपशम वो हम श्रेणी में कहते हैं। नहीं, मेरा भी कभी कभी शब्द आता है सर्वोपशम, पर सत्वोपशम या अनुदय उपशम, हाँ अनुदय रूप उपशम, हाँ ये सत्व में रहना, उदय में नहीं आना, सत्ता में पड़े रहना, हाँ उसी को अनुदय उपशम कहा ना। कल हमने बात देखी थी ना कि सर्वघाती के सत्वोपशम से, देशघाती के उदय से, और जो जितनी इंद्रिया है उसमें तो ये सर्वघाती देशघाती बताया, और जितने इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं है उसमें उल्टा दिया, देशघाती का सत्वोपशम, देशघाती का उदय क्षय और सर्वघाती का उदय इसमें उसमें लिया। इसे एक एक बढ़ती हुई इंद्रियों की बात यहाँ बताई थी। उसके बाद पंचेंद्रिय की भी बात उन्होंने बताई थी और केवली के बारे में वो शंका समाधान भी किया था। अब यहाँ जीव अनिंद्रिय क्यों होता है उसकी बात अपनी चल रही थी। 68 पेज पर यह प्रश्न पूछा गया था कि जीव अनिंद्रिय किस कारण से होता है। अनिंद्रिय नहीं, वो सिद्ध भगवान की बात है यहाँ पर। तो वहां तो बताया गया था क्षायिक लब्धि से जीव अनिंद्रिय होता है। उस पर शंका समाधान ये हो गई थी, जरा फिर से दोबारा पढ़ते वहां से, पेज नंबर 68। शंका, इंद्रिय में शरीर के विनष्ट हो जाने पर इंद्रियों का भी नियम से विनाश हो जाता है, अन्यथा शरीर और इंद्रियों के पृथक पने का प्रसंग आता है। यानी इंद्रिय और शरीर पृथक नहीं है, इसलिए शरीर का नाश होने पर, यानी शरीर अभी नहीं रहा तो इंद्रिया भी नहीं रहे। इस प्रकार इंद्रियों के विनष्ट हो जाने पर ज्ञान का विनाश हो जाता है। यानी क्योंकि उसकी मान्यता इंद्रियों के कारण ज्ञान होता है, तो इंद्रिया नष्ट नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है समानता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। यानी इंद्रियों को ही कारण मान लिया है, वो निमित्त भले है परंतु निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। और ज्ञान के अभाव में जीव का विनाश हो जाएगा, क्योंकि यानी इंद्रिया नहीं है तो ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं है तो जीव का अभाव। ये सब शंकाकार की मत है, क्योंकि ज्ञान का अभाव होने से निश्चेतन पने को, निश्चेतन जड़ यानी जड़ हो गया वो, प्राप्त हुए पदार्थ के जीवत्व मानने में विरोध आता है। यानी वो पदार्थ ज्ञान से रहित हुआ तो उसको जीवत्व नहीं कह सकेंगे, जीव का अभाव हो जाने पर क्षायिक लब्धि भी नहीं हो सकती, फिर उस जीव को जीव ही नहीं रहा तो उसके आधार से रहने वाले उसका परिणाम भी कैसे रहेगा, क्योंकि परिणामी के बिना परिणामों का अस्तित्व मानने में विरोध आता है। इतना कहकर उसको ये पूछना शंका यही है कि इंद्रिय रहित जीव के क्षायिक लब्धि की प्राप्ति सिद्ध नहीं होती, ये उनका कहना है। या ये कल का ही प्रश्न हमने पूरा पढ़ा, फिर दोबारा अब इसका समाधान। यह शंका उपयुक्त नहीं है क्योंकि जीव ज्ञान स्वभावी है, नहीं तो जीव के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी वस्तु कभी स्वभाव रहित नहीं होती, तो जीव तो ज्ञान स्वभावी है, और यदि कहा जाए कि ज्ञान स्वभावी जीव का अभाव हो जाने दो तो यह कहना भी ठीक नहीं है। यानी कहते जीव का अभाव होता है तो होने दो, प्रश्न क्या था? उन्होंने ये नक्की किया कि इंद्रिया नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो जीव नहीं है, और जीव का अभाव होता है तो होने दो, ऐसा प्रश्नकार पूछता है। यदि कहा जाए, ने आचार्य कहते यदि तुम ऐसा कहोगे कि ज्ञान स्वभावी जीव का अभाव होना होता है तो होने दो, तो कहते ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रमाण के अभाव में प्रमेय के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। इसका अर्थ समझ में आता है? प्रमाण का अभाव हो गया यानी जानने वाला जीव ही नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहा। हाँ, तो ज्ञान ही नहीं रहा तो गेय भी नहीं रहे। गेय तो हम उसी को कहते जो जानने में आते हैं, और प्रमेय का अभाव है नहीं क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता, और प्रमेय तो यानी जानने में तो चीजें आ रही है, प्रमेय का कभी अभाव नहीं पाया जाता। इससे यही ग्रहण करना चाहिए, यही जानना चाहिए कि ज्ञान का जीव उपादान कारण है। पेज नंबर 69 अभी आ रहे हैं हम, अभी ये कल की बात हम दोहरा रहे हैं। हाँ, और वह ज्ञान उपादेय है, जो उपादान का जो कार्य है उसको उपादेय कहते हैं, जो कि यावत द्रव्यात्मकी है अन्यथा द्रव्य के नियम का अभाव होता है। यानी जहाँ द्रव्य है और ये पर्याय है, द्रव्य से उत्पन्न होती है, तो द्रव्य है तो वहां वो उसका कार्य भी रहेगा ही रहेगा, अन्यथा द्रव्य के नियम का अभाव हो जाए होता है। नियम का अभाव ऊपर लिखा है ना, तम चौवा दयम जाव दव भावी अन्नहा दव नियमा भावा दो, द्रव्य का नियम से अभाव हो जाता है। इसलिए इंद्रियों का विनाश हो जाने पर ज्ञान का विनाश नहीं होता, ये बात सिद्ध की। शंकाकार की शंका यही थी कि इंद्रियां जो ज्ञान में निमित्त है, और इंद्रियों का अभाव हो जाने पर ज्ञान का ही अभाव हो जाता है, और ज्ञान का अभाव होने से जीव का अभाव होता है, जीव का अभाव हो गया तो क्षायिक लब्धि किसके आधार से रहेगी, ये उल्टा पुल्टा ये प्रश्न चल रहा था पूरा। अब फिर शंकाकार पूछते हैं, ज्ञान के सहकारी कारणभूत इंद्रियों के अभाव में ज्ञान का अस्तित्व किस प्रकार हो सकता है? प्रश्न फिर दोबारा वहीं पर आ गया कि इंद्रिया नहीं तो ज्ञान कैसे हो सकता है। यानी मान्यता अभी भी क्या है, इंद्रियों से ही ज्ञान हो जाता है, ये मान्यता पड़ी है, तो उसका निषेध हो रहा है यहाँ पर। समाधान, नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वभाव पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता। इंद्रिया पुद्गल है और ये ज्ञान स्वभाव तो अपने द्रव्य के आश्रय से होता है, वो पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता, तथा उत्पाद व्यय एवं ध्रुवत्व से उपलक्षित जीव द्रव्य का विनाश नहीं होता, क्योंकि जीव द्रव्य का लक्षण उपलक्षित है ना, उससे जो इसका लक्षण है, उत्पाद व्यय और ध्रुवता जीव का लक्षण है, इसलिए जीव द्रव्य का कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि सत द्रव्य लक्षण जो सत है वो अनादि से सत ही हो जाता है। अतः इंद्रियों के अभाव में भी ज्ञान का अस्तित्व तो बना रहता है, होने तो करो उसे तो बना रहता है। मैंने भले वहां इंद्रिया होए नहीं, उससे कुछ नहीं है, तो जीव का स्वभाव है तो वो स्वयं अपने से ही वहां बना रहता है, उसका ज्ञान का अस्तित्व बना रहता है। एक कार्य सर्वत्र एक ही कारण से उत्पन्न नहीं होता। यानी क्या कहना चाहते हैं, कार्य तो कोई एक दिखाई देता है, परंतु उसके निमित्त कारण अनेक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यहाँ कारण का जो, क्योंकि ऊपर ऊपर जो बताया था ना, ज्ञान का जीव उपादान कारण है, वहां तो उपादान के, हाँ हाँ वही कहते हैं, एक ही कार्य है परंतु उसके निमित्त जुदे जुदे हो सकते हैं, जिसको हम बहिरंग निमित्त भी कहते हैं, वेरिएबल हम हमारी भाषा में, कि सम्यक दर्शन हुआ, एक ही कार्य हुआ, तो हमने नारकियों में, देवों में, तिरेंचों में अलग अलग कारण भी देखे थे। यहाँ क्या कहते हैं, एक कार्य सर्वत्र एक ही कारण से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि खदीर, शीशम, धौ, धम्मन, गोबर, सूर्य किरण और सूर्यकांत मणि, इन अनेक कारणों से एक अग्नि रूप कार्य उत्पन्न होता पाया जाता है। यानी अग्नि उत्पन्न हुई, एक कारण बना। हम देखते कि अनेक वृक्षों के भी एक दूसरे पर घसने से अग्नि उत्पन्न होती है, कि जंगलों में आग लगती है ना, तो ये खदीर, शीशम वगैरह वो उसके नाम है, वृक्षों के नाम है। हाँ, अभी गोबर तो मालूम है ना, हाँ, सूर्य किरण, यानी तपती हुई सूर्य किरण हमने देखते हो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में उसको इकट्ठा करो तो कागज भी जलने लगता है, तो सूर्य किरण से भी आग लगती है। सूर्यकांत मणि भी हाँ, परंतु वो मणि तो मणि है ना, सूर्यकांत मणि से भी अग्नि, जो ये हम कहते हैं फॉस्फरस, हाँ ऐसे कहते हैं, हाँ है तो पुद्गली, हाँ नहीं, उसके भी उसको जो चिंतामणि रत्न वगैरह ऐसे जो बताए जाते हैं ना, वो उसका जो, उसके बारे में मेरा ज्यादा कुछ नहीं है मालूम मुझे। हाँ सूर्यकांत मणि वगैरह तो वो तो रत्न है ना, तो पैदा होते होंगे ना पृथ्वी में, उसके स्वामी कोई देव कहे जाते हैं, उसके बारे में मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं। हाँ वो इच्छा पूरी करते वो अलग, ये सूर्यकांत मणि है ना, उसमें से ज्वाला निकलती है। हाँ वो रहता है ना फॉस्फरस वगैरह से कुछ जो होते हैं, उसमें से भी निकलती है ना वो चंद, वो जो है चिंतामणि रत्न वगैरह जो, उसकी बात है, इच्छा पूरी करने वाले वो अन्य होते, वो अलग है। हाँ ये सूर्यकांत मणि है ना, उसमें से ज्वाला उत्पन्न होती है, इन अनेक कारणों से एक अग्नि रूप कार्य उत्पन्न होता पाया जाता है। यानी यहाँ तो ये दृष्टांत इसलिए दिया कि एक ही कार्य में जुदे जुदे अलग अलग कारण हो सकते हैं, यहाँ कारण हो सकते हैं या निमित्तों की बात हुई, तथा छद्मस्थ अवस्था में ज्ञान के कारण रूप से स्वीकार की गई इंद्रिया, यानी छद्मस्थ अवस्था में ज्ञान के कारण रूप, यानी ज्ञान में इंद्रिया निमित्त है, तो छद्मस्थ अवस्था जब तक है, यानी आवरण वाले जीव है ना ये, छद्मस्थ है ना, अभी ज्ञान आवरण दर्शन आवरण का उदय चल रहा है उसके, तो वहां इंद्रिया जो है वो उनको कारण रूप से स्वीकारा है, यानी ज्ञान में निमित्त रूप से स्वीकारा है। अब ये जो इंद्रिया है वो क्षीणावरण जीव के भिन्न जातीय ज्ञान की उत्पत्ति में सहकारी कारण हो, ऐसा नियम नहीं है। देखो ये पूरा वाक्य का अर्थ जरा अटपटा लग रहा है, पहले क्या कह रहे हैं, छद्मस्थ अवस्था में इंद्रिया जो है वो ज्ञान के सहकारी कारण है, यानी उसको ज्ञान में निमित्त रूप से स्वीकारा है। अब वही इंद्रिया क्षीणावरण जीव, यानी कौन, ब्रह्म, जिनका आवरण क्षीण क्षय हो गया है, केवली भगवान यानी सर्वज्ञ भगवान, तो क्षीणावरण जीव के यानी सर्वज्ञ के भिन्न जातीय ज्ञान, भिन्न जातीय नहीं, वो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान की जाति जुदी है। पहले छद्मस्थ में ज्ञान था, वो क्षोभसम ज्ञान था, क्षोभसम ज्ञान में इंद्रिया निमित्त थी, उसका स्वीकार भी किया था, परंतु क्षीणावरण जीव के यानी सर्वज्ञ जीव के भिन्न जातीय ज्ञान के ने केवल ज्ञान की उत्पत्ति में सहकारी कारण हो, ऐसा नियम नहीं है, यानी इंद्रियां केवल ज्ञान में निमित्त नहीं है। वो भले छद्मस्थ अवस्था में नियम है, यानी उसके निमित्त रूप थी, परंतु केवल ज्ञान होने पर सर्वज्ञ को इंद्रियां निमित्त रूप से नहीं है। ये कल इसी वाक्य पर हम रुक गए थे ना, क्योंकि क्षीणावरण क्या है, भिन्न जाति ज्ञान क्या है, उसकी बात हमने पड़ी नहीं थी। अब ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष प्राप्त होता है, क्योंकि फिर इंद्रियों से, वो केवल ज्ञान भी इंद्रियों से अगर मानेंगे तो क्या अति प्रसंग होता है, अन्यथा मोक्ष के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी जब यहाँ शरीर ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं, तो केवल ज्ञान भी नहीं रहेगा और मोक्ष ही नहीं रहेगा, क्योंकि मुक्त होने पर ज्ञान से रहित हो जाएगा। यानी ऐसी सब एक मान्यता गलत होती है, तो ये सभी ऐसे प्रसंग हो सकते हैं। और मोक्ष का अभाव है ही नहीं, क्योंकि यानी मोक्ष का भी अभाव नहीं है, क्यों नहीं है, तो बंध कारणों के प्रतिपक्षी रत्नत्रय की प्राप्ति है। देखो, बंध के कारणों से बंध होता है, तो बंध के कारण के जो प्रतिपक्षी है उससे बंध का अभाव कर मोक्ष हो जाता है, तो रत्नत्रय की प्राप्ति तो यहां देखी जाती है, इसलिए मोक्ष भी है, ये बात नक्की सिद्ध हो जाता है। और कारण सर्वत्र अपना कार्य नहीं करता है, ऐसा नियम नहीं है। देखो, ये बीच वाला फुल स्टॉप निकाल देना। ऐसा नहीं है, यानी कारण, हाँ वो फुल स्टॉप, क्योंकि वैसा देखा नहीं जाता। इस कारण अनिंद्रिय जीवों में, देखो जो अनिंद्रिय जीव है, सिद्धों की बात है, करण क्रम और व्यवधान, वो व्यवधान करना, व्यवधान से अतीत ज्ञान ज्ञातने ज्ञान होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, अनिंद्रिय जो जीव है उनका ज्ञान कैसा है, करणों से अतीत है, यानी इंद्रियातीत है, वो क्रम रहित ज्ञान है, अक्रम से एट ए टाइम युगपत सबको जानता है, छद्मस्थ जैसे क्रम सहित नहीं है, और व्यवधान से अतीत है, व्यवधान से रहित है, उसमें कोई विघ्न कोई बाधा नहीं हो सकती। ये जैसे सूक्ष्म ज्ञानियों के ज्ञान में कुछ बाधा हो सकती है, वैसे यहां बाधा नहीं आती, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तो कहते अनिंद्रिय जीवों में इनसे करण क्रम और व्यवधान से रहित ज्ञान होता है, तो यह ज्ञान निष्कारण भी नहीं है। आप कहेंगे वहां पर भी कोई कारण तो होना चाहिए, निष्कारण नहीं है, तो कहते क्योंकि आत्मा और पदार्थ के सन्निधान से वह उत्पन्न होता है, यानी वहां जगत के सारे पदार्थ भी और यहाँ आत्मा भी है, तो इस कारण वो सामने पदा ज्ञेय है और यहाँ ज्ञान होता है, यही इतना ही निमित्त है उसका, पर वहां कोई इंद्रियों का निमित्त नहीं है। इस प्रकार समस्त कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण क्षायिक लब्धि के द्वारा ही जीव अनिंद्रिय होता है। जीव अनिंद्रिय क्यों होता है ऐसा पूछा था, तो क्षायिक लब्धि के कारण, क्षायिक लब्धि के अर्थ उन्होंने समस्त कर्मों का अभाव लिया है। आप कहेंगे वो क्षायिक लब्धि जो केवली के भी होते हैं ना, परंतु उसकी बात यहां नहीं उठाई है। अनिंद्रिय जीव क्यों होते हैं उसकी बात पूछी गई थी इंद्रिय मार्गना के अनुसार, क्योंकि संयोग केवली अयोग केवली में भी वहां तो पंचेंद्रियपना का उपचार किया था। पंचेंद्रिय वो कर्म है ना, जाति नाम कर्म का उदय होने से, भले वहां क्षोभ नहीं है पांच इंद्रिय संबंधी, परंतु द्रवेंद्रिया बनी हुई है और इसलिए पंचेंद्रियपना का उपचार से भी हो सकता है। और हमने जीव समाज की अपेक्षा भी पंचेंद्रिय उनको कहते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। परंतु अनिंद्रिय जीवों में तो वो भी नहीं है, तो उनमें क्या कारण है, तो सभी समस्त कर्मों का क्षय, उसको यहाँ क्षायिक लब्धि कह दिया। अब यहाँ तक इंद्रिय मार्गणा की बात हो गई, अब काय मार्गणा के बारे में ऐसे प्रश्न पूछेंगे एक एक काय के बारे में, तो काय मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद होते ब्रह्मा जीवों के, कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, यानी वो पृथ्वी काय अग्नि काय को ये सब पांच नाम लेंगे और एक त्रस काय। तो यहाँ पूछेंगे एक एक के बारे में। कायानुवादेन 18 नंबर का सूत्र, पेज नंबर 70। कायानुवादेन पुढ़वी कायो नाम कदम भवदी। काय मार्गनानुसार जीव पृथ्वी काय किस कारण से होते हैं? ते हैं पैजे बिंदी। क्या पृथ्वी काय से निकला हुआ जीव भूतपूर्व नए से पृथ्वी काय कहलाता है? यानी पृथ्वी काय क्यों कहा, उसके अलग अलग उसमें पॉसिबिलिटी क्या पूछ रहे? तो वो पृथ्वी काय से निकला है इसलिए उसको पृथ्वी काय कहते हैं क्या? या पृथ्वी काय कौन के अभिमुख हुआ जीव नैगम नय के अवलंबन से पृथ्वी काय कहा जाता है? यानी जो पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न होने वाला जीव है क्या उसको पृथ्वी कायिक कहेंगे? या पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायिक कहा जाता है? या जिनको पृथ्वी कायिक नाम कर्म का उदय है उनको पृथ्वी कायिक कहेंगे? ऐसी मन में शंका करके पूछा गया है कि यह जीव पृथ्वी कायिक किस कारण से होता है। यानी उन्होंने प्रश्न का ही एक्सप्लेनेशन किया है, प्रश्न क्यों पूछा गया। अब उसका उत्तर यहाँ 19वें सूत्र में देते हैं। पुढ़वी काये नामाये उदयेण, पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी कायिक होता है। अब फिर शंकाकार को तो जगह है क्योंकि वो हमने 93 भेद देखे नाम कर्म के, उसमें पृथ्वी कायिक नाम का कोई नाम कर्म तो था नहीं, है ना? यही पूछेंगे अभी। नाम कर्म की प्रकृतियों में पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति नाम की प्रकृतियां निर्दिष्ट नहीं की गई है। कल भी उन्होंने पूछा था कि प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार में प्रकृतियों के नाम बताए गए हैं, उसमें ऐसे कोई नाम हमने भी तो सीखे नहीं है। इसलिए पृथ्वी कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव पृथ्वी कायिक होता है यह बात घटित नहीं होती। उसका समाधान नहीं, क्योंकि नाम कर्म संबंधी एकेंद्रीय जाति प्रकृति में उक्त सब प्रकृतियों का अंतर्भाव हो जाता है। एकेंद्रीय जाति प्रकृति के और ये उत्तर भेद कहेंगे, उत्तर भेद के उत्तर भेद। और कारण के बिना कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती, बार बार तो बताते हैं। यानी यहाँ कारण यानी वो कर्मों की उदय रूप कारण यहाँ ले ले रहे हैं। और पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति, पृथ्वी तो मालूम है अप यानी जल कायिक, तेज कायिक यानी अग्नि कायिक, वायु और वनस्पति को तो वही नेम है अतरस कायिक आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं। पहले में रूल क्या बताया, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। और शरीर संबंधी अनेक कार्य कौन से, कोई पृथ्वी कायिक है, कोई जल कायिक है, कोई अग्नि कायिक है वगैरह, अनेक कार्य देखे जाते हैं। इसलिए जितने कार्य है उतने ही कारण रूप कर्म भी है। ये उन्होंने एक न्याय बताया, एक रूल बताया। जितने जुदे जुदे कार्य देख रहे हैं हम, उनके कारण रूप कर्म भी उतने ही जुदे जुदे है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। शंका, अभी इस पर भी शंका पूछे। यदि जितने कार्य हो उतने ही कारण रूप कर्म होते हैं, तो भ्रमर मधुकर शलभ पतंग इंद्रगोप शंख मत्कुण, मत्कुण समझते हैं, खटमल नीम आम्र जंबू जंबोर और कदम्ब, ये वृक्षों के नाम है, आदि नाम वालों भी नाम कर्म होने चाहिए। अब जितने वृक्षों की वैरायटी है उतने नाम कर्म होने चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह बात स्वीकार की है। अब वनस्पति काय के भी इतने सारे भेद होगी उसमें नाम कर्म के, जितनी वनस्पतियां हैं उतना नाम उनके उसके जुदे जुदे नाम कर्म भी होंगे, इसलिए उसमें वो जीव उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हम हमेशा कहते ना ये तो 93 भेद है, उसमें और भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। तो जितने कारण उतने कर्म, हम तो इतने मति ज्ञान में भी देखते हैं ना, जितने गेय है उतने उसके ज्ञानावरण जुदे जुदे है। हम कहते अभी हमारा हिंदी भाषा ज्ञानावरण का क्षोभशम चल रहा है, अंग्रेजी भाषा ज्ञानावरण का क्षोभशम है, कुछ प्राकृत थोड़ा कुछ संस्कृत थोड़ा, वो क्षोभशम है, और बाकी हम जर्मनी नहीं जानते, फ्रेंच नहीं जानते, कन्नड़ नहीं जानते, वो सिंहली नहीं जानते, उस संबंधी हमका सर्वघाती का उदय है। असंख्यात हो गया ना भेद, अभी हम गेय संख्यात हमको जानते हैं, असंख्यात हो गए ना, 10,000 वर्ष की आयु है, योनि अलग अलग है, अभी वो सब केवली के ज्ञान का विषय है, उनने कर्म भी तो हो गए कि नहीं हो गए, उसमें जीव उत्पन्न हुए तो उनमें इतने कर्म तो अलग अलग हो गए ही। अभी फिर शंका, पेज नंबर 71 पर आए हम, समाधान के बाद शंका फिर। पृथ्वी कायिक जीवों के 21, 24, 25, 26 और 27 प्रकृतिक पांच उदय स्थान होते हैं। एक्चुअली नाम कर्म के उदय काल कितने होते हैं, इंद्रियों के चार ही होते हैं, क्योंकि उनके भाषा पर्याप्ति वाला नहीं है, और यहाँ पांच इसलिए बताया, कोई उद्योत या तप सहित वाला है, कोई रहित वाला है, तो उसकी अपेक्षा से यानी कुछ तो रिपीटेड है उसमें, तो इस एक बढ़ जाता है इनके। देखो 21 तो उनके विग्रह गति में है, 24 तो सहित वाला हो रहित वाला कोई भी हो, उनके 24 वाला स्थान शरीर ग्रहण करने के समय से शुरू होगा, 25 वाला स्थान शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उपघात का उदय होता है, 26 वाला वो शरीर पर्याप्ति होने पर उपघात और आतप या उद्योत वाला, वो भी 26 का हो सकता है, या उच्छ्वास के उदय में 25 वाला 26 होता है और उच्छ्वास के उदय में 26 वाला 27 होता है, इसलिए पांच अलग अलग स्थान, ये हमने चर्चा की थी इसकी विस्तार से। तो कहते ये पांच उदय स्थान होते हैं, उन्हीं को उन्होंने अंकों में लिखा 21, 24, 25, 26 और 27। इन पांच उदय स्थानों की प्रकृतियों का उच्चारण करके ग्रहण करना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। तो 21 वाले बताएंगे आप, अभी पृथ्वी कायिकों में लगाना है हमको। हाँ देखो देखो, पहले हम ध्रुवोदय के, अच्छा लाइन से बोलो, गति कौन सी होगी पृथ्वी कायिक में, तिर्यंच गति, एकेंद्रीय जाति, तेजस कारमान, हाँ अनुपूर्वी, वो तो स्थावर लेना है ना, संस्थान है ना, हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान है स्थावर, बादर या सूक्ष्म, हाँ पर्याप्त, हाँ यहाँ प्रत्येक और साधारण यहाँ नहीं होता, हाँ और यहाँ नहीं, हाँ स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग अनादेय, यश या अयश, पृथ्वी का एक है ना, यश या अयश दोनों होते, क्योंकि पर्याप्त तो भी हमने लिए थे उसमें, एक गया ना दुर्भग लिया था, दुर्भग अनादेय दोनों लिए थे, दोनों लिए थे, हाँ विहगति नहीं होती यहाँ पर, निर्माण है, हो गए ना 12, 9, 21 हो गए, 21। अभी 24 में क्या होगा इनका, अनुपूर्वी चली गई, परघात यहाँ नहीं होता, उपघात होता है, देखो प्रत्येक या साधारण शरीर, पहले हमने हुंडक संस्थान वहां नहीं लेना था, संस्थान बाद में होता है, यहाँ पर लेना संस्थान, यहाँ पर लेना, हाँ संस्थान उपघात, प्रत्येक या साधारण शरीर, यहाँ चार मिला ना, और नहीं नहीं अनुपूर्वी गई, 20 हो गए और चार मिले, तो चार में शरीर औदारिक शरीर लेना ना, औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान, प्रत्येक प्रत्येक ही लेना, साधारण यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि पृथ्वी कायिक पर ले रहे हैं, पृथ्वी कायिक पर ले रहे हैं, इसलिए प्रत्येक ही लेना, साधारण यहाँ नहीं लेना, एकेंद्रीय इन जनरल, एकेंद्रीय जनरल होता या पृथ्वी कायिक होते तो प्रत्येक साधारण की बात होती, प्रत्येक ही लेना। तो अंगोपांग, हुंडक संस्थान, प्रत्येक शरीर और संस्थान, संस्थान हो गया रूपघात, ये चार मिले। शरीर पर्याप्ति होने पर परघात मिला, फिर उच्छ्वास मिला। और पृथ्वी का एक है तो आतप भी हो सकता है, उद्योत भी हो सकता है। अन्यों में केवल उद्योत लेना, आतप उद्योत का डिफरेंस यहां पर लेना, पृथ्वी का एक में लेना। सिर स्थिर ध्रुवोदय, ये दोनों दोनों को गिनना है। वो हमने भी गिने थे, नहीं हमने दोनों को गिने हैं, हमने वो ऑप्शनल में नहीं लिए। कौन से पेज पर देख रहे हैं? 36 पर। अगुरु लघु को नहीं बोला था? बोला था, अच्छा तो फिर सब आ गए। हाँ सब आ गए। संस्थान एक्स्ट्रा बोला था। अभी हाँ, आगे यहाँ बढ़ते हैं। हाँ कभी जब शरीर ग्रहण करने के समय में प्रत्येक ही आएगा, पृथ्वी कायिक में प्रत्येक शरीर ही लेना, सब में प्रत्येक शरीर ही लेना, केवल वनस्पति कायिक में प्रत्येक और साधारण का भेद मात्र वनस्पति कायिक में लेंगे। हाँ निगोदनी में होते तो इसलिए उच्चारण करके ग्रहण करना चाहिए, इसलिए हमने जरा उच्चारण करके देख लिया उसको। जानना चाहिए, थोड़ी रिवीजन हो जाती है ना। हाँ इस प्रकार शंका तो यही है उसकी, वहां पर भी ये सारे उदय स्थान शंकाकार ने इसीलिए पूछे थे। नरक गति नाम कर्म के उदय से होता है, ऐसा क्यों अनेक प्रकृतियों का उदय होता है? ऐसे यहाँ पर भी पूछ रहे है कि इस प्रकार इन बहुत प्रकृतियों के एक साथ उदय आने पर पृथ्वी का एक नाम प्रकृति के उदय से जीव पृथ्वी का एक होता है, ये कैसे बन सकता है? प्रश्न ख्याल में आए ना, इतनी सारी उनके प्रकृतियां उदय रूप है तो अकेले पृथ्वी का एक नाम कर्म के नाम क्यों लिया उन्होंने? समाधान, नहीं, क्योंकि दूसरी प्रकृतियों के उदय की अन्य जीवों में साधारण पाई जाती है। उदय की दूसरी प्रकृतियों के उदय चाहिए, इधर पयडीनम उदयस्य साधारणत्वलम्भादौ, साधारणता चाहिए। दूसरी प्रकृतियों के उदय की अन्य जीवों में साधारणता पाई जाती है, क्योंकि साधारणत्व साधारणता पाई जाती है। उदय की लिखा ना, साधारणता ने वो तो सामान्यपने अन्य में, यानी वो एक कॉमन है सब में। या हम ऐसा कहेंगे दूसरे प्रकृतियों के उदय अन्य जीवों में साधारण पाए जाते कहना पड़ता, ये साधारणता पाई जाती है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वो ट्रांसलेशन हो जाएगा। किंतु पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय उस प्रकार साधारण नहीं है, क्योंकि अन्य पर्यायों में वह नहीं पाया जाता, जिसको हम कहने स्पेसिफिकली इसी पर्याय में पाया जाता है, इसलिए उन्हीं उसी के कारण ये पर्याय होती है, ऐसा हम कहेंगे। वो तो वही घटित होगा। हाँ वो नहीं लिखा है, अलग अलग पद्धति से कथन होता है ना। उन्होंने कहा ना वो तो उस भव के बने उस पहले समय से आयु के अंत तक उसका उदय पाया जाता है, यहाँ पर भी ऐसा ही कहेंगे हम। एक स्पेसिफिकली पृथ्वी का है, क्योंकि एकेंद्रीय जाति कर्म का तो उदय है आयु के शुरुआत से अंत तक, पर्याय पर्याप्त होगा तो पर्याप्त होगा, जो कोई वो उदय तो बदलेंगे नहीं उनके, परंतु ये पृथ्वी काय के ही क्यों कहा इसको? वो काय की अपेक्षा यहाँ कुछ चर्चा विशेष चल रही है, अन्य जाति की काया है ना उनकी। अब 20 नंबर, अब यही प्रश्नोत्तर सब में लागू हो गए। आओ कायो नाम कदम भवदी, जीव अपकायिक किस कारण से होता है? उसका उत्तर, आउ काय नामाय उदयेन, अपकायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव अपकायिक होता है। तेउ कायो नाम कदम भवदी, जीव अग्नि काय किस कारण से होता है? अग्नि का, हाँ आगे, तेउ काय नामाय उदयन, अग्नि कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव अग्नि कायिक होता है। वायु कायो नाम कदम भवदी, जीव वायु कायिक किस कारण से होता है? 72 पृष्ठ पर आना भी। वायु काय नामाय उदयन, हाँ एकेंद्रीय जाति के ये भेद अलग अलग। कभी कभी हम स्थावर कायिक कहेंगे तो सबको मिलकर स्थावर काय भी कहते, तो स्थावर काय में भी इतने भेद हो जाएंगे। स्थावर काय भी अलग अलग टाइप के स्थावर हो गए ना उसमें, यहाँ तो एकेंद्रीय जाति में ही इसको इंक्लूड कर दिया। वैसे तो हम सामान्य से स्थावर काय और तरस काय ऐसा कह भी देते हैं। 25 नंबर, वायु कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव वायु कायिक होता है। वो उसका उकार गया वायु, प्रिंटिंग यहाँ बहुत स्पष्ट है बीच बीच में। वनफई कायो नाम कदम भवदी, जीव वनस्पति कायिक किस कारण से होता है? वनफई काय नामाय उदयन, वनस्पति कायिक नाम प्रकृति के उदय से जीव वनस्पति कायिक होता है। इन सूत्रों का अर्थ सुगम है, विशेषता केवल इतनी ही है कि अपकायिक आदि जीवों के 21, 24, 25 और 26 प्रकृतिक चार उदय स्थान होते हैं। अब का क्यों कहा फिर? अच्छा, उसमें से किसको नहीं होते किसको होते वो बताएंगे। पहले अबकाई दादी सबकी बात की, जीवों के 21, 24, 25 और 26 प्रकृतिक चार उदय स्थान होते हैं, उनके 27 प्रकृतिक उदय स्थान नहीं होता क्योंकि उनके आताप और उद्योत इन दो प्रकृतियों के उदय का अभाव होता है। किंतु अपकायिक और वनस्पति कायिक जीवों के 27 प्रकृतिक उदय स्थान को मिलाकर 5 उदय स्थान होते हैं, क्योंकि उनके आताप के बिना उद्योत का कहीं कहीं उदय देखा जाता है। यानी पृथ्वी कायिकों में उसकी विशेषता है और इसमें कहीं कहीं किसी किसी के उद्योत का होता है, आताप का तो किसी के नहीं है। इसलिए पृथ्वी कायिक में तो आताप उद्योत सब ले लिया, उसमें किसी के होता है किसी के नहीं होता है। यानी इन्होंने एक पहला वाक्य बताया कि अपकायिक आदि सबको होता है, इतना हम डायरेक्ट यही कह सकते हैं कि अग्नि कायिक और वायु कायिकों में। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, ऊपर बताया अपकायिक आदि के नहीं होता, ये पहले बता दिया, उसमें बाद में बताया उसमें किसी किसी के होता है। पहले तो सबको इकट्ठा नहा कह दिया, फिर विशेषता बताकर इनमें होता है ऐसा कह दिया। यानी किसमें होता है तो पृथ्वी कायिक, अपकायिक और जल कायिक, वो भी बादर और पर्याप्त हो, सब में नहीं, उनमें किन्नी किन्नी में इनका उदय पाया जाता है आतप और उद्योत का। हाँ आतप, आतप का तो इनमें नहीं होता, आतप तो केवल पृथ्वी कायिक में है, इसलिए पहले सबका निषेध कर दिया, फिर किसी में उद्योत होता है वो बता दिया। हाँ होता है जल का, बादर पर्याप्त जल कायिकों में उद्योत नाम कर्म का उदय है, होते होंगे ना कोई पानी, हमारे देखने में नहीं आते पर कहीं पर होगे। अभी इतने सारे समुद्र है, द्वीप है, कहीं कहीं तो होगी ना पानी में भी ऐसा। वो पानी चमकता है तो पानी, हाँ पानी में ही वो है, पानी ही सिर्फ चमकदार है, वो परावर्तित करना वो बात अलग है, ये स्वयं उसकी अपनी चमक होगी, उसका अपना उद्योत होगा। अग्नि अलग, अग्नि में उद्योत नहीं होता है, अग्नि जुदी बात है। हाँ हाँ हमने नहीं देखे परंतु होगा तो सही ना, क्योंकि हमेशा आता है ना, जल बादर और जल का एक और बादर पृथ्वी का एक और वनस्पति में भी प्रत्येक में प्रत्येक वनस्पति का एक में कुछ में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक में ही होता है क्योंकि वो प्रशस्त प्रकृति है, उसका अपर्याप्त के साथ सूक्ष्म के साथ साधारण के साथ उदय नहीं पाया जाता। अब 28 नंबर का, हाँ उसके साथ नहीं होता है और अग्नि वायु के साथ भी उसका उदय नहीं होता। अब ये तो पांच देखे हमने। अब कहते तसकायो नामक अधम्भवदि, जीव त्रसकाय किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। त्रसकाय नाम प्रकृति के उदय से जीव त्रसकायिक होता है, यह सूत्र भी सुगम है। विशेषता यह है कि त्रसकायिक जीवों के, देखो अभी यहाँ नामकर्म के उदय स्थान जुदे जुदे बताए हैं। त्रस कहने से सब कुछ आ गए, द्विंद्रिय से लेकर केवली तक के 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 और 8 अयोगी के भी ले लिए इसके अंदर, ये सारे ही त्रस जीव है। हाँ 20 वो सामान्य केवली के समुदात में, 21 वो तीर्थंकर केवली के समुदात में कहो या अन्य जीवों के विग्रह गति में कहो, 25 वाला जो है वो आहार शरीर वालों के होता है, देव और नारकियों के होता है, वो सबको त्रस में गिनना ना, अभी वो 25 वाला स्थान हो जाएगा। ये भी त्रसों के गिन रहे, वो 25, 26 एक इंद्रियों के नहीं गिन रहे हम। 26 वाला शरीर धारण करने के पहले समय में, या केवली भगवान को भी होगा वो कपाट समुद्रात में। 27 वाला स्थान तीर्थंकरों के होगा कपाट समुद्रात में। 28 वाला शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है। 29 वाला वहीं पर किसी को उद्योग से भी होता है, किसी को उद्योग से होगा या तीर्थंकर के भी, वो 28 के बदले 29 वाला होगा, 27 के बाद 29 में पहुंचेंगे डायरेक्ट। 30 वाला स्थान वो उच्छ्वास पर्याप्ति 31 वाला भी, क्योंकि उदय उद्योग से सहित वालों को भी वो हो सकता है या तीर्थंकर वाला जीव 21 के बाद 27 में जाता है, 27 के बाद 29 में जाता है, फिर 30 और 31 में पहुंचता है। 9 और 8 तो तीर्थंकर जीव के अयोगी में और 8 सामान्य केवली के अयोग अवस्था में। यानी त्रस कहने से सबको ले लिया, द्विंद्रिय से लेकर वो सब अयोग केवली तक सबको ले लिया। प्रकृति 11 उदय स्थान होते हैं, इनको जानकर कहना चाहिए, इसलिए उन्होंने जानकर के लिए 52 पृष्ठ बता दिया यहाँ पर। उद्योत रहित वाला, उद्योत सहित वाला सब बता दिए। मनुष्यों के भी वो 8 और 9 स्थान भी बता दिए उन्होंने। अब आगे का प्रश्न पूछेंगे। अकायो नामक अधम्भवदि, जीव अकायिक किस कारण से होता है। देखो अपकायिक अलग बात थी, अपकायिक यानी जलकायिक था, अकायिक यानी शरीर जुदा, शरीर से बिना है, यानी सिद्ध भगवान अकायिक, क्योंकि केवली के भी है ना, अरिहंतों के भी काया है, उनको तो त्रसकायिक कहेंगे। यहाँ अकायिक कहने से सिद्धों की बात पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछा है जीव अकायिक किस कारण से होता है। अब ये प्रश्न को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। षटकायिक नाम प्रकृतियों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि देखो ये शंकाकार की शंका पूछ रहे, शंकाकार पूछ रहा है, नहीं तो ये इसको नियम नहीं मान लेना। नहीं लिखा पर अभी उससे सिद्ध हो जाता है, नहीं नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी शंका समाधान हमारे लिए वो बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ही है ना, तो ये प्रश्न में उसकी शंका बताते हैं, ये प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। प्रश्न प्रश्न ही, ऊपर प्रश्न चिन्ह देना, हमने हर बार किया था मगर बताया नहीं था। हाँ जहाँ जहाँ प्रश्नार्थक है ना सूत्र, वहाँ वहाँ प्रश्न चिन्ह देना, उन्होंने प्राकृत में ऊपर दिया है, हिंदी में नहीं दिया है। ये प्रश्न का ही एक्सप्लेनेशन है, यानी ये शंका ही है। क्या शंका है? कि षटकाई के नाम प्रकृतियों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्वादी आश्रवों का विनाश नहीं पाया जाता है। यानी वो आश्रवों का विनाश अभी मानने को तैयार नहीं है पर। और अनादिपने की अपेक्षा नित्य मिथ्यात्व विनष्ट नहीं होता। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कब से है? तो अनादि से है, अनादि से चला आ रहा है, इसलिए कहते उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि नित्य का विनाश के साथ विरोध है। यानी गड़बड़ी क्या हो रही है? वो प्रवाह अपेक्षा जो नित्य कहा था, वो प्रवाह ने हर पर्याय जुदी जुदी है, तो हर पर्याय हर समय होती रही, इसलिए अनादि से थी और वो चली आई थी। तो कहते वो उसको नित्य ने, वो वस्तु नित्य होती उसको मानकर कह रहे कि उसका नित्य का विनाश नहीं होता। मिथ्यात्वादिक आश्रव सादी नहीं है। मिथ्यात्वादी आश्रव प्रत्येक जीव के पहले तो अनादि से थे, तो इसलिए वो सादी नहीं है, अनादि से है, क्योंकि संवर के द्वारा निर्मूलता आश्रव के दूर हो जाने पर उसकी पुनः उत्पत्ति होने में विरोध आता है। जब वो निर्मूल हो जाते हैं तो बाद में उसे उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उसको सादी नहीं कह सकते। यह सब मन में धारण करके कहा गया है कि जीव अकायिक किस कारण से होता है। यानी प्रश्नकार ने क्यों पूछा तो उसके मन में इतने प्रश्न उठे। जो प्रवाह रूप से अनादि से था उसको उसने कायम द्रव्य स्वभाव जैसा नित्य मान लिया, इसलिए उसका नाश होना असंभव मानता है। यदि यदि उसकी भूले हो रही है, अब ये पूरे प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं। खैयाए लब्धिये, क्षायिक लब्धि से जीव अकायिक होता है। देखो, क्षायिक लब्धि ने केवल वो मात्र ये नव क्षायिक लब्धि नहीं लेना, यानी कर्मों के क्षय से, ऐसा ही उसका अर्थ होता है। देखो यहाँ क्या बताते हैं, वो क्षायिक लब्धि यहाँ नहीं गिनी है। जैसे क्षौक्षमिक लब्धि, जनरल स्टेटमेंट, जैसे क्षौक्षमिक लब्धि हमने एक इंद्रियों को देखी, एक इंद्रियों की कितनी क्षय, हाँ जैसे क्षौक्षमिक लब्धि कहेंगे तो पांच अंतराय वाली वो तो, हाँ हाँ वो ऐसा लेना, कर्मों के क्षय से हो जाता है। इसलिए कर्मों की कौन सी अवस्था है वैसे वैसे वहां जीव की पर्याय बताइए। देखो अभी ये ऊपर जितने प्रश्न है ना उसके उत्तर यहाँ दे रहे। शंकाकार ने माना था आश्रव अनादि से है मिथ्यात्वादी, जो अनादि उसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा उसका कहना था। उसके उत्तर में बता रहे, अनादि होने से आश्रव नित्य नहीं होता, क्योंकि कूटस्थ अनादि को छोड़कर प्रवाह अनादि में नित्यत्व नहीं पाया जाता। बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखो अनादि के दो भेद किए, एक कूटस्थ अनादि और एक प्रवाह अनादि। समझ में आता है ना? यानी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु जो है तो द्रव्य नित्य है, वो कूटस्थ है। यानी द्रव्य ने कहने से द्रव्यांश जिसको हम कहेंगे, क्योंकि द्रव्य दो तरह से कहेंगे, द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं। यहाँ वस्तु के दो अंश करना है, द्रव्यांश और पर्यायांश। जो द्रव्यांश वो कूटस्थ है और वो अनादि से है, उसका कभी नाश नहीं होता, जिसको हम ध्रुव अंश कहेंगे। परंतु प्रवाह अपेक्षा से हर समय कोई ना कोई पर्याय तो होती है, इसलिए पर्याय कब से है, परिणमन कब से हो रहा है, तो अनादि से। परंतु एक ही परिणमन वो अनादि से नहीं है, प्रवाह अपेक्षा अनादि से है। यहाँ क्या कहते हैं कि अनादि होने से आश्रव नित्य नहीं होता, क्योंकि कूटस्थ अनादि को छोड़कर प्रवाह अनादि में नित्यत्व नहीं पाया जाता। यानी भले वो प्रवाह रूप से अनादि होने पर भी उसका वो वही मिथ्यात्व चालू ही रहे, ये बात नहीं हो सकती। यदि पाया जाए तो बीजादिक का विनाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रवाह रूप से तो उनमें अनादित्व देखा जाता है। ये बीज जो है, बीज से वृक्ष हुआ, फिर बीज आए, फिर वृक्ष हुआ, फिर तो ये प्रवाह रूप से बीज चल रहे है। तो कहते कि बीजादि का विनाश नहीं होना चाहिए था, परंतु विनाश तो देखा जाता है, तो प्रवाह रूप से उसमें अनादिपना है। इसलिए ये समझ में आई, उदाहरण क्या हुआ, बीज कब से है, अनादि से है, तो बीज का वृक्ष हुआ, वृक्ष के बीज हुए, उसके ये तो इस तरह ही चल रहे, परंतु किसी विशेष बीज का नाश भी तो, हम उसको जला दिया, उसको सेक दिया, तो उसका तो बीज तो नष्ट हो गया उसमें, ये तो पाया जाता है। ऐसे मिथ्यात्वादी प्रवाह रूप से अनादि होने पर भी वो आश्रव है और आश्रव का विनाश देखा जाता है। इसलिए अनादित्व आश्रव के नित्यत्व सिद्ध करने में साधन नहीं हो सकता, ये न्याय की भाषा है। साधन यानी हमें कोई वस्तु सिद्ध करनी है तो उसके लिए हमको वो प्रूफ देने पड़ते हैं, उसको हम साधन कहेंगे। तो आश्रव अनादि है इसलिए वो नित्य है और उसका नाश नहीं होता, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि ऐसा मानने में अनैकांतिक दोष आता है और आश्रव कूटस्थ अनादि स्वभाव वाला है नहीं। ये अनादि के दो भेद किए, एक कूटस्थ अनादि, एक प्रवाह अनादि। आश्रव जो है वो कूटस्थ अनादि नहीं है, क्योंकि प्रवाह की अपेक्षा अनादि रूप से आए हुए मिथ्यात्व असंयम और कषाय रूप आश्रवों का वर्तमान काल में भी किसी किसी जीव में विनाश देखा जाता है। ये प्रवाह से अनादि आए हुए भी किसी में मिथ्यात्व का विनाश देखा जाता है, वो समय दृष्टि चले जाते हैं, कोई को असंयम का विनाश होकर कोई संयमी भी देखे जाते हैं, कोई कषाय रूप आश्रवों का अभाव होकर कोई सर्वज्ञ भी देखे जाते हैं, इसलिए उनमें भी किसी किसी जीव में उनका विनाश देखा जाता है। अब 74 पृष्ठ पर आ गए, 32 नंबर का सूत्र पढ़ना है, जोगाणुवादे न भी, ये योग मार्गणा की यहाँ से आरंभ शुरुआत होती है। पहले तो अभी हमने कौन सी मार्गणा देख ली, गति इंद्रिय काय, अभी योग मार्गणा की बात पूछेंगे। तो योग जोगाणुवादेन मन जोगी वची जोगी काय जोगी नाम कदम भवदी, मूल तीन भेद किए, कोई मनोयोगी है, कोई वचन योगी है, कोई काय योगी है। इस सूत्र का हिंदी अर्थ नहीं लिखा है, वहां एक पूरा सूत्र लिख दो, हमने लास्ट टाइम लिखा, नहीं हमने लास्ट टाइम लिखा था शंका के पहले, शंका के पहले पूरा एक वाक्य डालो बीच में या ऊपर लिखो, कैसे भी लिखो, योग मार्गानुसार एक वाक्य है पूरा आड़वा आड़ा, वो बीच में रह जाएगा, शंका के ऊपर जगह है ना, वहां पूरा लिख देना आड़ा। योग मार्गानुसार जीव, शोभा लिख रहे क्या, मंदाबेन को बोलना लिखने को, 74 पेज पर दो लाइन के बाद लिखना है शंका के ऊपर, योग मार्गानुसार जीव मनोयोगी कौमा वचन योगी कौमा काय योगी किस कारण से होता है, प्रश्न चिन्ह, और आगे 32 लिख दो सूत्र का नंबर जैसे ऊपर लिखा है। फिर ये मैं पूरा पढ़ती हूँ, योग मार्गानुसार जीव मनोयोगी वचन योगी काय योगी किस कारण से होता है, यह प्रश्नात्मक सूत्र है। अब इस प्रश्न में शंकाकार क्या पूछना चाहता है उसको एक्सप्लेन कर रहे आचार्य, वो पूछ रहे हैं योग क्या औदयिक भाव है, क्या क्षौषमिक है, क्या पारिणामिक है, वो परिणामिक नहीं पारिणामिक करना आपको लिखना है, और क्या लिखा हो गया शंका, देखो शंकाकार क्या पूछ रहे हैं, योग औदयिक भाव है, क्या क्षौषमिक भाव है, क्या पारिणामिक है, क्या क्षायिक है, क्या औपशमिक है, योग शायिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि संसारी जीवों के सर्व कर्मों के उदय सहित वर्तमान रहते हुए योग के अभाव का प्रसंग आता है। तथा सर्व कर्मोदय से रहित सिद्धों को योग के अस्तित्व का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं? यदि योग को क्षायिक मानेंगे तो सभी कर्मों का अभाव हो गया, तो क्षायिक होने से योग उत्पन्न होगा और वो सिद्धों को भी होगा, वो बात नहीं होती। अब कहते सभी कर्मों का उदय चल रहा है और उसको क्षायिक मानेंगे हम, तो सभी कर्म है और क्षायिक होने से योगी नहीं रहेगा संसारी जीवों को, क्योंकि क्षय अभी हुआ नहीं किसी कर्म का, तो योग भी नहीं रहेगा, यानी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्षायिक भाव मानेंगे तो संसारी अयोगी हो जाएंगे और सिद्ध सयोगी हो जाएंगे, इसलिए वो क्षायिक नहीं हो सकता। दूसरी बात, योग पारिणामिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर क्षायिक मानने से उत्पन्न होने वाले समस्त दोषों का प्रसंग आता है। यानी अगर पारिणामिक होता तो संसारी जीवों में और सिद्धों में वो होने चाहिए थे, क्योंकि वो स्वभाव भाव है। योग औषमिक भी नहीं है, क्योंकि औषमिक भाव से रहित मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में योग के अभाव का प्रसंग आता है। यदि कर्मों के उपशम से वो अगर औषमिक भाव, औषमिक तो सम्यक और चारित्र दो ही होते हैं, तो वो किसी को सम्यक तो किसी को चारित्र होता है, परंतु अगर हमने योग औषमिक भाव मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव में तो कोई औषमिक भाव है ही नहीं है, तो वहाँ योग का अभाव रहेगा, क्योंकि उसको औषमिक होने पर अयोग होता है ऐसा अगर मानना पड़ेगी तो। यानी वो ना क्षायिक है, ना पारिणामिक है और ना ही औषमिक है। योग घाती, देखो योग घाती कर्मों के उदय से उत्पन्न भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानावन दर्शनार्थ मोहनी अंतराय के किसी के उदय में वो मोहन योग नहीं होता है, क्योंकि सयोगी केवली में घाती कर्मों का उदय क्षीण होने पर, यानी क्षय होने पर योग के अभाव का प्रसंग आता है। यानी हम पूछेंगे घाती कर्मों में से कौन से कर्मों के उदय में होता है, तो नहीं, क्योंकि सयोग केवली के भी योग है, उसका अर्थ वो घाती कर्मों के किसी उदय के कारण नहीं है। अघाती कर्मों के उदय से उत्पन्न भी नहीं है, हाँ, क्या कहते हैं, अघाती कर्मों के उदय से उत्पन्न भी नहीं है, क्योंकि वैसा मानने से अयोगी केवली में भी योग की सत्व प्रसंग आता है। योग की कैसे, योग के जोगस्य संत प्रसंगादो, योग के सत्व का प्रसंग आता है। क्योंकि घाती कर्मों का उदय तो अयोगी को भी है, तो उसके भी योग होना चाहिए। अब कहते योग घाती कर्मों के क्षोभम से भी उत्पन्न नहीं है, क्योंकि हाँ अभी हम 74 पेज पढ़ रहे थे, योग को वो क्षायिक भाव भी नहीं है, औषमिक भी नहीं है, पारिणामिक भी नहीं है, ये सिद्ध किया। अब कहते घाती कर्मों के उदय से भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि सयोग केवली में घाती कर्म तो है नहीं, फिर भी योग है। अब कहते अघाती कर्मों के उदय से भी नहीं है, क्योंकि अयोगी में अघाती का उदय है और योग नहीं है। ये शंका करके अलग अलग ऑप्शन बता रहे। अब पूछ रहे योग घाती कर्मों के क्षोभम से भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि घाती कर्मों का क्षोभम हमने देखा था, वो देशघाती में, सर्वघाती देशघाती के उसमें होता है, तो अगर उससे हो जाए तो सयोगी केवली में तो घाती कर्म है ही नहीं है, और अयोगी केवली में क्षोभमी की योग के अभाव का प्रसंग आता है। योग आघाती कर्मों के क्षोभशम से भी उत्पन्न नहीं है, क्योंकि आघाती कर्मों में कोई क्षोभशम होता ही नहीं है, क्योंकि क्षोभशम की परिभाषा ही देशघाती सर्वघाती में घटित होती है। क्योंकि आघाती कर्मों में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धकों का अभाव होने से क्षोभशम का भी अभाव है, क्योंकि हमने क्षोभशम भाव देखा था जहां सर्वघाती देशघाती स्पर्धक होते हैं वो किसमें होते हैं, देशघाती प्रकृति में ही होते हैं, यानी सारे क्षोभशम भाव देशघाती प्रकृतियों में घटित हो गए। वो तो वैसा सर्वघाती देशघाती का भेद नहीं है अघाती में, इसलिए भी वहां नहीं होता। यह सब मन विकल्प मन में विचार कर पूछा गया है कि जीव मनोयोगी वचन योगी और काय योगी किस कारण से होता है, क्योंकि हमेशा वो भावों की बात या अन्य नए निक्षोपों की बात मन में पकड़कर वो पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले एकेंद्रीय जाति वगैरह में वो क्षौक्षमिक लब्धि क्षायक लब्धि वगैरह बात आई थी, यहाँ वही कारण यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब यहाँ 75 पृष्ठ पर आते हैं, 33 नंबर का सूत्र, खवो व समियाए लब्धि। देशघाती में होता है पर उसमें लगेगा, अयोगी में क्षोभ संभव नहीं होता क्योंकि अयोगी में कोई प्रकृतियां नहीं है घाती की, ना सयोगी में है। अघाती में क्षोभशम कैसे होगा, घाती कर्मों में होता है, यही कह रहे घाती कर्मों के सर्वघाती देशघाती भेद है, आघाती में होते ही नहीं है, तो आघाती में क्षोभशम घटित ही नहीं होता है। क्षोभशम भाव कहाँ तक है, 12वें गुणस्थान तक है। घाती कर्मों का नाश होने पर क्षोभशम भाव भी रहा नहीं, क्या नहीं, वो संयोग केवली को कौन से भाव है, पारिणामिक है, शायिक भी उत्पन्न हुए है, और कौन से है, औदयिक है, तीन ही भाव रहेंगे ना उनके। नहीं होता क्योंकि उसके अगर क्षोभशम से उत्पन्न होता है मानेंगे तो संयोग केवली को कोई क्षोभशम नहीं है, उनको घाती कर्म भी नहीं है। ये अभी तो कैसे बता रहे वो तो देखेंगे। तो उत्तर में कहे खवो व समियाए लब्धिये, क्षोभशमिक लब्धि से जीव मनोयोगी वचन योगी और कायोगी होता है। तो ये अटपटा लग रहा है ना अभी हमको, अब फिर पूछ रहे हैं, हाँ ये शंका अभी पूछ रहे। फिर जीव प्रदेशों के संकोच और विकोच रूप परिस्पंद को योग कहते हैं। यह परिस्पंद कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है, क्योंकि कर्मोदय से रहित सिद्धों के वह नहीं पाया जाता। अयोग केवली में योग का अभाव होने से योग औदयिक नहीं है यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि अयोगी केवली के शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होता है, और शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला योग उसके बिना होता नहीं है, क्योंकि वैसा मानने में अति प्रसंग दोष आता है। इस प्रकार औदयिक योग को क्षौक्षमिक क्यों कहा जाता है, प्रश्न तो यही है, क्योंकि योग किस कर्म के उदय में होता है, तो शरीर नाम कर्म के उदय में होता है, ये तो बिल्कुल सर्वश्रुता है। और फिर संयोग केवली में औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, उसके अंतिम समय तक पाया जाता है। वो शरीर नाम कर्म के उदय की विच्छित्ति होती है 13वें में, और 14वें में ना औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय, ना तेजस, ना कारमान, इसलिए वहाँ योग नहीं है, इसलिए उसको औदयिक क्यों नहीं कहते, क्षौक्षमिक क्यों कह दिया, ये इसका प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर बनने के योग्य बहुत से पुद्गलों के संचय को प्राप्त होने पर वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभाव से व उन्हीं स्पर्धकों के सत्वोपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होने के कारण क्षौक्षमिक कहलाने वाला जो वीर यानी बल बढ़ता है, उस वीर्य को पाकर जीव प्रदेशों का संकोच विकोच बढ़ता है, इसलिए योग क्षौक्षमिक कहा गया है। यहाँ और भी बात अलग से बताइए, क्या कहते हैं? यानी शरीर नाम कर्म के उदय में क्या होता है कि पुद्गलों का संचय होता है। हमने कहा ना कर्म को ये ग्रहण करने की, ये पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति होती है, यानी वो पुद्गलों का संचय हो जाता है। और अब ये वीर्यांतराय का जो क्षोभषम घटित किया है, ये क्षोभषम बढ़ता है यानी वीर्य जहां बढ़ता है तो वीर्य को पाकर जीव प्रदेशों का संकोच विकास बढ़ता है, इसलिए योग क्षौक्षमिक कहा है। हाँ, ये नई बात है। अब शंका, वैसे अभी हमने जो देवलाली में लिया था वहां उन्होंने एक परिभाषा बताई, जीव के जो उपयोग चलता है वो उपयोग को भी वहां योग कहा था। एक परिभाषा वैसे भी आई थी अपने, वो पैम्पलेट्स हमने देखे थे ना, उसमें धवला पुस्तक 12वीं में आया था। यहाँ कुछ अलग बात बताए। देखो फिर शंका, वीर्यांतराय के क्षोभषम से उत्पन्न हुए बल की वृद्धि और हानि से यदि जीव प्रदेशों के परिस्पंद की वृद्धि और हानि होती है तो अंतराय कर्म के क्षीण होने पर सिद्ध जीव में योग की बहुलता का प्रसंग आता है। यानी जहां क्षोभषम बढ़ता है वहां अगर आप संकोच बढ़ता है ऐसा मानेंगे बढ़, तो जहां वो वीर्यांतराय का क्षय हो जाता है वहां तो परिपूर्ण कितना बढ़ना चाहिए, यानी योग और ज्यादा बढ़ना चाहिए, उनका प्रश्न है। समझ में आए थे? जहां ज्ञान का क्षोभषम है वहां अल्प ज्ञान है, और क्षायिक होने पर ज्ञान कितना बढ़ जाता है। वैसे यहां अगर क्षोभषम से वीर्य बल होता है और उससे स्पंदन कहो परिस्पंद बढ़ता है कहेंगे, तो क्षायिक होने पर तो कितना बढ़ना चाहिए, ये इनका प्रश्न है शंकाकार का। समाधान, नहीं, क्योंकि क्षौक्षमिक बल से क्षायिक बल भिन्न देखा जाता है और क्षौक्षमिक बल की वृद्धि हानि से वृद्धि हानि को प्राप्त होने वाला जीव प्रदेशों का परिस्पंद क्षायिक बल से वृद्धि हानि को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इससे तो अति प्रसंग दोष आता है। इन्हें क्यों नहीं आता, ये हमारा समाधान नहीं होता है, परंतु वो बल भिन्न, ये भिन्न टाइप की बात हो जाती है। अब शंकाकार पीछे पूछते हैं, यदि योग वीर्यांतराय कर्म के क्षोभषम से उत्पन्न होता है तो संयोगी केवली में योग के अभाव का प्रसंग आता है। प्रश्न तो यही रहा ना, संयोगी में तो योग देखा जाता है, उसका समाधान, तो वो ऐसा प्रसंग नहीं आता, क्योंकि योग में क्षौक्षमिक भाव तो उपचार से माना गया है। अब यहां आते हैं मूल पॉइंट पर, असल में तो योग औदयिक भाव ही है, ही लगाया। क्योंकि उपचार से वो क्षौक्षमिक है, असल में तो योग औदयिक भाव ही है। और औदयिक योग का संयोग केवली में अभाव मानने में विरोध आता है, यानी वहां तो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से वह तो औदयिक भाव होता है। वह योग तीन प्रकार का है, मनोयोग, वचन योग और कायोग। मनोयोग मनोवर्गणा से निष्पन्न हुए द्रव्य मन को अवलंबन करके जो जीव का संकोच विकोच होता है वह मनोयोग होता है, मनोयोग है। भाषा वर्गणा संबंधी पुद्गल स्कंधों को अवलंबन करके जो जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है वह वचन योग है। और जो चतुर्विध शरीरों को चाहिए, शरीरों को, चार प्रकार के शरीर कौन से, औदारिक, वैक्रेयक, आहारक, कारमान तेजस, कारमान को छोड़ो, हाँ वो परिस्पंद जिसको हम कहेंगे ना उसके, यानी प्रदेश बड़ा छोटा नहीं होता है, पूरे जीव पूरा ही जीव जैसे संकोच विकोच होते हैं उसके। और जो चतुर्विध शरीरों को अवलंबन करके जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है वह काय योग है। तेजस को तो लेते नहीं ना योग में, इसलिए औदारिक वैक्रिय आहार और कारमान ये चतुर्विध। क्योंकि काय योग में तो हम इसके सात प्रकार करते हैं, हर एक के अपने अपने मिश्र के साथ और एक कारमान अलग। अब यहां से जो प्रश्नोत्तर है वो हम कल देखेंगे 77 पृष्ठ से, क्योंकि जरा अलग प्रश्नोत्तर है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन सदा देत हो लक्ष्मी लक्ष्मी।